बहरहाल उनके कोमा में जाने की दो वजह हो सकती है, कुएं में गिरना या गिरने से पहले सख्त किस्म की चोट जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह। बहरहाल उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी।
कुएं में गिरने से पहले मुमकिन है कोई एक्सीडेंट हुआ हो?
एहतमाल हो सकता है। यह एहतमाल बीमार के लिए यानी अच्छे होने की उम्मीद 50% ही होती है।
और ना होने की?
दिमागी मौत।
मैं यहां ये कहने आया था कि मेरे वास्ते बरादरी का हक अदा करो। अगर मैं सही हूं तो मेरी मदद करो। अगर मेरा मकसद सही है तो मेरी मदद करो। तुम्हारी इजाजत से रोया खानम भी राजी है। कोशिश करो कि तुम्हारे डैड भी राजी हो जाए, उनकी मर्जी हासिल करने में मदद करो मेरी।
अभी इन सब बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है।
हाशिम खान, बुखार में भट्टी की तरह तप रही है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।
वहां किसने ढूंढा?
एक चरवाहे ने, उसने ढूंढा और नजदीकी पुलिस चौकी में खबर कर दी।
फेंक दो उस डंडे को।
तुम बताओ खुदा के वास्ते, क्या भेड़ों के लिए बंदूक ताना बुरी बात नहीं? जाओ, अब तक 10 मरतबा चुरा चुके हो, फिर चोरी करो, चोरी करते रहो। मेरे भाई, इनका मालिक मेरे पैसों से कम कर लेता है। चोर चोरी करे तो, आवारा कुत्ते खाएं तो, भेड़ भागे तो, मेरी जेब से जाए। अब उस पर तुम लोग इस बार बंदूक लेकर?
भले आदमी वो भेड़िया है जो भेड़ बकरियों के झुंड पर हमला करता है, तुमको ऐसा लगता है कि हम लोग चोर हैं?
हर तरह के भेस में होते हैं, 4 पैरों वाले भेड़िए, 2 पैरों वाले भेड़िए।
हम पुलिस वाले हैं।
अब्बास अली,
हाँ।
3 दिन पहले, ये आज 4th दिन है, तुमने एक नीम मुर्दा जवान को कुएं से निकाला था, है ना?
हाँ। उन चोरी करने वालों ने फाटक का दरवाजा तोड़ रखा था। भला हो मेरा कि मैं जल्दी पहुंच गया और उनको भगा दिया। फिर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि रात में चोरी की मुसीबत से बच गया और भेड़ों का मालिक नुकसान उठाने से चोरों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फिर मैंने देखा कि वाय मुसीबत, भेड़ें कम हैं, 5 कम थीं। ये बेचारे जानवर टूटे हुए फाटक से निकल भागे थे। मैंने हिरनी की दौड़ लगाकर 4 को तो पकड़ दिया, मगर 5वीं को पकड़ने के लिए खुदा गवाह है कि 2 किलोमीटर तक दौड़ लगानी पड़ी ताकि मालिक का कर्जदार ना हो जाऊं। मैं सूखे कुएं के पास पहुंचा, पोल्ट्री फार्म के पास, मगर वो पोल्ट्री फार्म धूं धूं करके आग में चल रहा था। फायर ब्रिगेड की पानी की बौछार, आदमियों की कोशिश, मैं शर बरपा था, अचानक पापा की आवाज कुएं से आने लगी। चाकू को दांत से दबाया और कुएं के अंदर उतरा कि उसको मरने से पहले हलाल कर दूं। भेड़ उस बेहोश पर जा गिरी थी जिसके चेहरे और बदन से खून बह रहा था। क्या करूं क्या ना करूं, बस इसी उधेड़ बुन में था कि सोचा जाकर पुलिस को खबर कर दूं। लेकिन पुलिस को खबर करता तो भेड़ से हाथ धो बैठता, और वही हुआ कि भेड़ तलफ हो गई और अब्बास अली को अपनी जेब से जुर्माना अदा करना पड़ा। खुदा शाहिद है कि यही हकीकत है।
सलाम, मैं सब्बाग हूं।
क्या हम एक दूसरे को पहचानते हैं?
यही कि हमारा आपस में लेन देन है इसलिए एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं अपने इंश्योरेंस का पैसा वक्त पर अदा करता हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कंपनी भी जो मेरा नुकसान हुआ है भरपाई कर देगी।
लेकिन हम इंश्योरेंस वाले नहीं हैं। मैं सादिकी हूं, इदारा तहकीकात का इंचार्ज।
पुलिस?
ये पुलिस इदारे का एक शोबा है।
अभी बस वही शोभा जो मुझे खुश कर सकता है वो इंश्योरेंस की तरफ से चेक देने वाला शोभा है। अभी जो चीज मुझे खुश कर सकती है वो इंश्योरेंस की तरफ से भरपाई का पैसा है। मुझे अच्छा लगता अगर आप लोग इंश्योरेंस के मुलाजिम होते।
मगर हम लोग नहीं हैं।
आग?
हाँ, सब कुछ जल चुका है।
आप लोगों को मुझसे क्या काम है?
कोई खास काम नहीं है, मगर चार दिन पहले तुम्हारे उस पोल्ट्री फार्म के सामने वाले सूखे कुएं में से एक नीम जान जवान को निकाला गया है। एक 30-32 साल नौजवान को, उसी रात को जब आग लगी थी।
बहुत काली अंधेरी रात थी, शाम को तकरीबन 30-40 मुर्गियां ऊंग रही थी। मैं चला गया कि उनके लिए दवा का बंदोबस्त करूं। मैं जब वापस आया तो देखा आग पोल्ट्री फार्म को निकल रही थी। जो ड्राइवर मुर्गियों का दाना लेकर आता है उसने फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया था। ये फर्जीन भी था, रात को यहीं पर सोता है। मेरी पूरी जिंदगी जलकर राख हो गई। ये पोल्ट्री फार्म मेरी जिंदगी था, जलकर राख बन गए। उस रात मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, ना जानदार ना बेजान।
तुमने फायर ब्रिगेड को फोन क्यों नहीं किया?
मैं तो आग देखकर खुद को खो बैठा था।
तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना जो हमारे काम आ सके?
मैं नहीं, मैं जा रहा हूं, देखता हूं इंश्योरेंस वाले रास्ता गुम ना कर दें।
उस ड्राइवर को कैसे ढूंढा जा सकता है?
उस वैनेट वाले ड्राइवर का जो नंबर लिया है ढूंढो, बात करते हैं।
जी जनाब।
इस फर्जीन के बारे में भी मेरे लिए मालूमाती रिपोर्ट फराहम करो।
वो बुरी तरह घबराया हुआ था ना, मैं उस पर नजर रखे हुआ था।
अच्छा हुआ एक मर्तबा ध्यान तो रखा।
पहले अपनी सिगरेट बुझा फिर अंदर आ।
पुलिस पोल्ट्री फार्म आई थी, ये तय नहीं था कि इस कदर मामला संजीदा हो जाए। था क्या, क्यों था ऐसा याकूत? आखिर मेरे बारे में क्या सोचा था बाबा? मैं छिपाने की सलाहियत नहीं रखता हूं। मैं पुलिस चौकी में कदम रखने से पहले ही अपना मुंह खोल दूंगा, ये बता दे रहा हूं।
चुप, बता के पछताएगा 7 जन्म तक अपनी गलती पर। तब तक अपना ये मुंह बंद रख।
प्लीज अपना मैसेज नोट करवाएं।
तुम्हारे डैड ने अपनी आखिरी बात पहले ही बयां कर दी, कबल इसके कि मैं खुद कुछ कहूं, कबल इसके कि तुम अपने जवाब की दलील पेश करो।
तुम्हारे डैड ने अपनी आखिरी बात पहले ही रख दी क्योंकि उनका जोर ज्यादा है। किसी को चाहना क्या ताकत और जोर का मोहताज है? क्यों रोया खानम, मैं इस मामले में पड़ चुका हूँ और अकेला ही ये रास्ता तय नहीं कर सकता। मैं
ये नहीं हो सकता कि पीठ पीछे भी ध्यान रखूं और सामने भी देखता रहूं। अगर तुम अपनी बात पे अटल हो तो मैदान में कूदना होगा तुम्हें। मैदान के बीच में हलवा नहीं खैरात किया करते। मैदान के बीच में फरियाद है, चीखो पुकार है, तमाचा है, गालियां हैं।
मैं आज की रात मैदान में कूदना चाहता हूं। मैं आज की रात तुम्हारे डैड से आखिरी मर्तबा बात करूंगा।
मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर तुम मामले के बीच में नहीं हो तो बता दो, जो कुछ भी हो मुझे मंजूर है। उसके बाद जो शिकस्त होगी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा
और हमेशा हमेशा के लिए नापायद हो जाऊंगा। मैं आज की रात तुमसे राब्ता कायम करूंगा, अगर फोन उठाकर जवाब दिया।
इसका मतलब यह है कि अपनी बात पर कायम नहीं हो। अगर अभी की तरह फोन उठाकर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यह होगा कि अपनी बात पर कायम हो।
खुदा हाफिज।
ए लड़की, तुम अभी तक यहीं हो? सुबह को तुम्हारे डैड ने फोन किया था कि तुम कहाँ हो।
क्या मैं रोया जान को दोपहर का खाना खाए बगैर जाने दूंगी?
बहुत अच्छे, अभी खाना खाओ और जल्दी चलो वरना तुम्हारे डैड का चिल्लाना शुरू हो जाएगा।
मेरी आवाज का क्या? मेरे डैड कावे को बोलते हैं कि दफा हो जाओ बगैर इसके कि मेरी राय जाने। आप मुझे उठाकर यहाँ लाए हैं बगैर इसके कि मेरी राय जाने। मेरे डैड सुबह को फोन करके बोलते हैं घर आ जाओ बगैर इसके कि मेरी राय जाने। मेरी आवाज का क्या? फिर कब मेरी आवाज निकलेगी? आवाज निकालने की इजाजत भी है कि नहीं? चीखूं चिल्लाऊं?
इसका क्या मतलब?
यानी ये कि ये घर नहीं जाना चाहती। यानी इसका मतलब ये कि अब रोया और शायस्ता में आमने सामने की लड़ाई होगी।
वो फोन उसके दिमाग में घुस गया है।
कौन सा टेलीफोन? कावे उसके दिमाग में घुस गया है।
हालात कल से बेहतर है ना, है ना? कम से कम अभी जानती हो कि कहाँ है, जानती हो कि हर चीज से ज्यादा दुआ की जरूरत है।
क्या हुआ डैड? हाँ, क्या हुआ?
इन्हें शुगर है मोहतरमा, नींद ना लेना और खाली पेट रहना भी इनके लिए खतरनाक है। सुबह और दोपहर की इंसुलिन क्यों नहीं लगाई मोहतरमा? इनको 10 cc इंसुलिन लगाएं।
कल रात से न सोना, इंसुलिन का ना लगाना, भूखा रहना, इन सब ने आप पर दबाव डाला है। घर जाइए सारा के साथ, आप घर जाइए।
तुम्हारे बगैर कैसे जाऊं बेटी?
औरत का घर वहां है जहां उसका शौहर है, है ना? यही बात आप हमेशा मुझसे कहा करते थे।
मगर तुम्हारा यहाँ रुकना,
ये ना कहें कि मेरा रुकना बेफायदा है। मैं अगर इस बिस्तर पे पड़ी होती तो क्या अहमद रजा मुझे छोड़कर चला जाता?
नहीं
डैड, घर जाइए, आराम कीजिए, बाद में अगर दिल चाहे तो आ जाइएगा। जेवर को भी बता देना कि अहमद रजा का पता चल गया है।
अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली, मैं इसके लिए बहुत परेशान था। बावजूद इसके कि आज के हालात ज्यादा पेचीदा हैं, मगर मेरे ख्याल में आपके लिए आज का दिन कल से कहीं ज्यादा अच्छा होगा, है ना?
मेरे डैड भी यही बात कह रहे थे। आज का दिन कैसा रहा? कल के मुकाबले में वो पुलिस चौकी, वो शाइस्ता और उनकी बेटी, क्या बेहतर रहा?
नहीं जानता फैसले पर अटल रहना अच्छी खबर है या नहीं, अगर है तो हाँ, आज का दिन मेरे लिए पहले से ज्यादा अच्छा है। आज मैं पहले से ज्यादा अटल हूं, आज के दिन कल से ज्यादा अटल हूं। मेरी नफरत में इजाफा है, परसों से 2 दिन पहले से ज्यादा नफरत है, पहले से और भी ज्यादा।
मोहतरमा मुरादी, मेहरबानी करके जनाना वार्ड में आए। मोहतरमा मुरादी, मेहरबानी करके जनाना वार्ड में आए।
मेरे ख्याल से मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बताएं। अहमद रजा के साथ दोस्ती के खातिर कोशिश करूंगा कि यहां रोज आ सकूं।
अगर सब लोग हर रोज भी आना जाना शुरू करें तो भी मैं यहीं पर रहूंगी। जगह खाली होना किसको कहते हैं मुझे नहीं पता था, मगर तुम्हारे ना रहने से ये बात मेरी समझ में आ गई। इन बड़ी और आबादानी आंखों को खोलो, उठो, हमें बात करनी है। अपने ना होने के बारे में बताओ, अपनी बहन जेवर और खुदा रहमत करे अपने वालिद के राज मुझे बताओ, अपने दोस्तों कावे और मतीन के बारे में बताओ, उस तमाचे के बारे में बताओ जो मजलूमाना तौर पर तुमने सलीम से खाया है, शाइस्ता के बारे में, उस कर्जन हसन अकाउंट के बारे में जो गुमनाम और दूर दराज की मस्जिद में खुला। उठो, तुम्हें सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। अपने एतमाद, अपनी वफादारी, सब्र इश्क के बारे में बताओ। तुम्हारे पूरे वजूद को कितनी बातों ने अपनी लपेट में ले रखा है। इन काली और कमजोर आंखों को मेरे लिए खोलो, मेरी नहीं वो कमजोर हमदम, खोलो अपनी सुनमगी आंखों को।
अहमद रजा बाबा यही है ना?
हाँ, जाइए जनाब, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है।
जिंदा बचेगा या नहीं? नहीं, मेरा मतलब मैं जानना चाहता हूँ वो बचेगा या नहीं। मैं उसका पुराना दोस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ उसके लिए।
मैं अपनी शिफ्ट अपनी दूसरी नर्स को दे रही हूँ, वो थोड़ा सख्त है। तुमको यहाँ देखेगी तो मुझ पर गुस्सा होगी।
उसने क्या कहा?
नहीं मालूम, तुम्हारे शोहर के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में पूछ रहा था।
क्यों पूछ रहा था?
मुझे इन सब चीजों से क्या मतलब, तुम बाहर जाओ।
सलाम, आपका नौकर हूं, आपका खिदमतगार हूं, आपका गुलाम हूं।
उसको देखा?
तुम मेरे शौहर को जानते हो? उनके जिंदा होने या ना होने के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
आपको किससे काम है मोहतरमा?
एक आदमी जिसका छोटा कद है
वहां है।
नई काम करने वाली है?
वो आदमी जिसे कुछ देर पहले तुम बात कर रहे थे और जो गाड़ी में बैठकर चला गया, वो कौन था?
परदे याकूत।
कौन?
उसका नाम परदे याकूत है।
यानी तुम उसे जानते हो?
अभी तक उसका घमंड और वलवला गया नहीं है। अभी भी वो ये समझता है कि मैं उसके कारखाने में काम करने वाला नौकर हूँ। जब मैं उसको सलाम करता हूँ तो मुझसे मुंह फेर लेता है।
वो कहाँ मिल सकता है?
सुना है चाइना की चीजों ने याकूत की काया पलट दी है। मैं उसके कारखाने का मुलाजिम था, पिछले साल मुझे निकाल दिया। मैंने 6 साल उसके साथ काम किया, आखिर में थोड़ा सा पैसा हथेली पर रखकर बोला निकल जाओ। नौरोज खान की सीढ़ियों पर सिलाई का काम होता है। क्या तुम्हें उससे कर्जा वसूलना है?
ओहो, मुझे उसका पूरा पता चाहिए। हेलो, सलाम, मुझे इंस्पेक्टर सातकी से बात करनी है। नहीं है, कब आएंगे? फिर कौन जानता है?
हमारे मेहमान लोग बहिश्ते जहरत गए हैं, वापसी पर खाना खिलाना होगा। कल रात से अब तक पूना की भी कोई खबर नहीं है। आखिर हमारे बाबा की फातिहा खानी है, इज्जत का सवाल है। मेरा दिल फातिहा खानी को लेकर परेशान हो रहा था।
अंदर आ जाओ।
क्या तुमने इसमें कुछ जाफरान कम नहीं डाला?
नहीं, नहीं मुनासिब है।
हाँ, इसका ढक्कन खोलो। खोलो खोलो। शुक्रिया शुक्रिया।
उसको क्या हुआ कि इस तरह बुखार में तप रही है, जख्मी भी है, बेसुध होकर दरवाजे के बाहर गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी? लोगों का ध्यान बस उसकी मलामत में रहता है।
नादान है, कम उम्र है,
तीर और तलवार की जरूरत नहीं है। हमने इस पे ध्यान रखा ताकि इंसान बने और अपने घर लौट जाए। इसके बाद तुम लोग इसका हाथ किसने जख्मी किया? तुमने? कुछ हुआ है क्या?
उठो बंदे खुदा, बिस्मिल्लाह कहो और सब कुछ जनाब वली को बता दो।
कोई बताएगा क्या हुआ या नहीं?
तुमने जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, खुजस्ता की भावज ने अहवाज से फोन करके बताया कि खुजस्ता की माँ को दिल का दौरा पड़ा।
कैसे हैं हाशिम खान? थोड़ी देर आराम कर लो तो ऊपर आऊंगा मदद करने को।
नहीं भाई, ऊपर कोई काम नहीं है। मैं कह रहा था खुदा पर मैं फिदा हो जाऊं। उसने सभी बंदों को उनकी सलाहियत के हिसाब से गम और खुशी दिए हैं। जनाब वली, अभी उठो और खुद को अहवाज जाने के लिए जल्दी तैयार करो।
तुम मेरे शौहर को पहचानते हो?
मोटर वाले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया होगा, मुझे उधर तक छोड़ दो, मेहरबानी होगी।
सलाम। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी की है, अपने कागजात दिखाएं बराए मेहरबानी।
शुक्रिया।
फोन पर कौन था?
नहीं पीऊंगा, मुझे जाना होगा।
क्या उस फोन ने तुम्हें परेशान कर दिया है?
अंकल समसामी बता रहे थे रोया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, मोहतरमा जबरदस्ती पर उतर आई है।
यानी वो घर वापस नहीं आना चाहती?
नहीं मालूम उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
फिर तो तुम मोहब्बत से पेश आना, ठीक है?
जाहिर है फातिमा जान, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो?
तो फिर डैड के आने से पहले निकलू ना यहाँ से?
ठीक है। सलाम।
सलाम।
डैड क्या खबर है?
8 अरब बेजान रुपया आईसीयू के बिस्तर पर मुंह बंद किए पड़ा है, यही है खबर। रोया कब आई घर?
वो रोया अभी घर नहीं आई है, फिलहाल आप थोड़ा आराम कर लें। आप रुके, मैं जाता हूं। हेलो समसामी अंकल, सलाम। डैड आपकी तरफ निकले, बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। आखिर मैं कैसे कहूं कि वहां ना जाएं?